ஓம் சாந்தி. ஓம் சாந்தி. ஓம் சாந்தி. ஹம் ஜானதி ஹே हमारी प्यारी बाबा ने ब्रह्मा बाबा की द्वारा हम बच्चों को अडॉप्ट किया और जिसमें भी खास यज्ञ के आदि में यज्ञ प्रीता के प्रति बलिहार होने में स्वयं को समर्पण करने में कुमारियां और माताओं ने ही हिम्मत का कदम उठाया, अपने आप को बाप के पर बलिहार किया, चाहे सितम सहन किए, जुलम सहन किए, लेकिन बाबा के पर बलिहार होके इतने बड़े यज्ञ की स्थापना में जो फाउंडेशन बने वो कौन है, कौन है, कौन है? हम कुमारियां। तो अपने को शाबाश करो कि संगम युग में हमें भी कुमारी जीवन मिला है और जो काम हमारी मम्मा ने किया, जो काम हमारी दादियों ने किया, अपने आप को यज्ञ के वेदी पर समर्पित कर दिया, ऐसा ही कमाल का काम हिम्मत और साहस का काम बलिदान का काम करने का भाग्य हमें भी प्राप्त हो सकता है क्योंकि हम कुमारियां हैं। तो आप भी सभी चाहते हैं ना कि जिन्होंने हमारे सामने एक मिसाल दिया है, एग्जाम्पल बने हैं, ऐसी हमारी मम्मा और दादियों की तरह हम भी इस यज्ञ के लिए समर्पित हो जाएंगे, बलिहार जाएंगे। ऐसा श्रेष्ठ संकल्प जिनों के दिल में है वो जरा हाथ तो उठाए, हाथ उठाए भैया, सभी हाथ उठा रहे हैं, ताली बजाओ अपने लिए। हम सभी बाबा के बने, कोई साल, दो साल, पांच साल, दस साल से ज्ञान में चल रहे हैं। हम जानते हैं ये पढ़ाई तो देवता बनने की है और देवताओं के चेहरे में एक गजब का आकर्षण होता है। वैसे भी ये शरीर व्यक्ति है और आत्मा व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है। ये शरीर पर्सन है लेकिन आत्मा उनकी पर्सनालिटी है। आत्मा निकल जाने के बाद तो कोई शरीर की पर्सनालिटी नहीं रहती है, तो आज हमें विषय दिया है कि दिव्य दर्शनीय मूरत बने और उस दिव्य दर्शनीय मूरत बनने का आधार बाबा ने बताया है रूहानियत है। तो ये रूहानियत क्या है और इस रूहानियत का अनुभव हमने अपने जीवन में किया है, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को रोज याद प्यार देते हैं। हम जानते हैं रूह माना आत्मा, इस विषय पर अच्छी तरह से यहां से आप स्टैंप लगा के जाओ जो आपकी दिव्य दर्शनीय मूर्ति को देखकर आपको देखने वाले भी दिव्य दर्शनीय मूर्त बन जाए। ये हो सकता है, ये हो सकता है। देखो दुनिया के अंदर कोई कुछ नया करे या न करे, लेकिन कॉपी करना तो सबको आता है। जो चीज अच्छी लगती है उसकी कॉपी हर एक कोई कर सकता है, क्योंकि मालूम हो जाता है कि ये कैसे होता है। तो पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हमें अपने जीवन के अंदर ये रूहानियत को कैसे धारण करनी है। एक है लौकिक जीवन, दूसरा है अलौकिक जीवन, तीसरा है देवताई जीवन। और वंडरफुल बात तो ये है कि इसी एक जीवन में हम तीनों ही जीवन का अनुभव करते हैं। जब हमें बाबा नहीं मिला तब हमारी जीवन लौकिक जीवन थी, क्योंकि हमें कुछ भी मालूम नहीं था, न खुद के बारे में मालूम था, न बाबा के बारे में मालूम था, न ड्रामा के बारे में मालूम था, न कोई समझ थी और न कोई सोच था। जैसे आया वैसा अगड़म बगड़म सोचते रहते थे, जैसे बाबा मुरलियों में कहते हैं ने, कण कण में भगवान को मान लिया था, ठिकर बित्तर में भगवान को मान लिया था, गौरव करते थे, व्रत करते थे, उपवास करते थे ना, जो करते थे हाथ उठाओ, देखो सभी कुछ भी मालूम नहीं होने पर भगवान के लिए हम व्रत नियम आदि करते थे। लेकिन जैसे ही बाबा मिला तो हमारी जीवन अलौकिक बन गई, हमारा सोचना समझना बोलना पहरवेश खाना पीना कितना एकदम से परिवर्तन आ गया। ज्ञान की जीवन मिलने से एकदम परिवर्तन आ जाता है और वो परिवर्तन बहुत जल्दी हो जाता है। जो हमारा आदतों का परिवर्तन है वो मालूम पड़ने से उसमें बहुत जल्दी चेंज आ जाता है। प्याज लहसुन ही तो छोड़ना है ने छोड़ दिया, बाहर का खाना ही तो छोड़ना है छोड़ दिया, कोई बात नहीं फिल्म छोड़ना है छोड़ दिया, टीवी छोड़ना है छोड़ दिया। लेकिन मुझ आत्मा की सोच और समझ में यथार्थ रूहानियत आई है, ये सवाल है। मैं रूह हूं और मैं रूह, मैं आत्मा अगर आत्मिक स्थिति में रह करके अपने जीवन को व्यतीत करती हूं तो मुझ आत्मा के बोलने में, देखने में, बातचीत करने में, खाने पीने में, दिनचर्या में, सब बातों में रूहानियत आ जाती है। वो जो पहला स्वरूप था और अभी का स्वरूप है उसमें रात और दिन का अंतर पहले मुझे खुद को महसूस होना चाहिए। जब मेरे को खुद को महसूस हो कि मैं तो बदल गई हूं और मैं बहुत बदल गई हूं और मुझे अभी भी बदल जाना है और बदलाव की रूपरेखा जो बाबा ने दी है एक फरिश्ते की रूपरेखा, मुझे अपनी वो बदलाव की रेखा मेरे जीवन में हर घड़ी अनुभव करनी है। अब कभी कभी क्या होता है कि हमें चीज अच्छी लगती है, हमें आदर्श अच्छे लगते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि बरोबर दादी के जीवन में ये बात थी बहुत अच्छी है, मम्मा के जीवन में ये बात थी बहुत अच्छी है, ब्रह्मा बाबा के जीवन में ये बात थी बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे जीवन में ये बात हो वो पता नहीं कहाँ तक संभव है। कोशिश तो करते हैं, हम भी चाहते हैं, हमको बनना तो ऐसा ही है, लेकिन जितनी चाहिए जैसी चाहिए ऐसी सफलता नहीं मिलती है। पुरुषार्थ के मार्ग पर ऐसा होता होगा ना, होता होगा ऐसी। देखो ये पुरुषार्थ के मार्ग पर से आप हम सब गुजर रहे हैं, हम भी छोटी 18 साल की उम्र थी जब बाबा के ज्ञान में आए थे, बाबा साकार में थे और क्योंकि बंधन भी था, आप में से बहुतों को बंधन होगा, माँ बाप ज्ञान में नहीं चलते होंगे, भाई भाभी ज्ञान में नहीं चलते होंगे, वो आपको समर्पित होने की यस नहीं करते होंगे, शादी के लिए फोर्स करते होंगे। अब ये मन में सारा घमसान चल रहा है, मन में ये तूफान चल रहा है और फिर हमारे आगे इतनी ऊंची बात आवे कि रूहानियत के द्वारा हम दिव्य दर्शनीय मूरत बने तो कभी कभी बड़ी बड़ी बातें हमें आदर्श के रूप में अच्छी लगती हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में हम कभी ये सोचते ही नहीं है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये पुरुषार्थ के मार्ग पर एक स्टेज आती है। मैं हाथ नहीं उठवाती हूँ, मुझे मालूम है, क्योंकि जीवन की इतनी लंबी यात्रा पार करने के बाद और उसमें भी जीवन में पहले दिन से पुरुषार्थ में पहला ही नंबर रहना है, ऐसी दिल की लगन के साथ यहाँ पहुँचते हुए किन किन मार्गों से गुजरे हैं वो मालूम है। और इसीलिए आज मैं अनुभव के आधार से आपको एक विधि बताना चाहती हूँ, और अगर वो विधि पूर्वक पुरुषार्थ चला, विधि बाबा की बताई हुई है, अगर वो भगवान बाप की बताई हुई विधि पूर्वक चले तो सिद्धि सफलता विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। वो विधि कौन सी? विधि है किसी भी धारणा के लिए अंदर में संकल्प करना। हमारे अंदर संकल्प बहुत उठते हैं सारे दिन में, ओहो कितने सारे संकल्प उठते हैं, फिर उन संकल्पों में से थोड़ी इच्छाएं बन जाती है, बहुत विचार में से थोड़ी इच्छाएं बनती हैं, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन बहुत विचार और बहुत इच्छाएं हमें कमजोर कर देती हैं। दुनिया में भी कहते हैं ना कि ज्यादा बच्चे पैदा करना एडवाइस नहीं देती। तो करना क्या है? बहुत इच्छाएं, बहुत विचार की जगह पर हमें संकल्प की शक्ति को पहचानना है। संकल्प शक्ति एक बहुत बड़ा शक्तिशाली शस्त्र है। आज की मुरली में भी बाबा ने कहा है। तो हमें कोई भी कार्य करने के लिए शुभ संकल्प और शिव संकल्प, हमारा हर संकल्प वो बाप दादा की प्रेरणाओं को कैच करते हुए अंदर में स्वयं के प्रति शुभ भाव रखते हुए कि बाबा मेरे साथ हैं, बाबा का दिया हुआ ये संकल्प है और मैं आत्मा आज ये संकल्प लेती हूँ कि मुझे नंबर वन बनना है। जीवन के कोई भी क्षेत्र में द हाइएस्ट ऑफ द हाई थॉट विचार कि जो कार्य करे उसमें हम नंबर वन बने, जो भी कार्य करे पर हमें उसमें नंबर वन लेना है, माना क्वालिटी का काम करना है। क्वालिटी का काम करने से हम क्वालिफाइड हो जाएंगे, क्वालिफाइड हो जाएंगे तो हमें सर्टिफिकेट मिलेगा, ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट मिलेगा। जिनों को ये संकल्प करने की और संकल्प के द्वारा आगे बढ़ने की अंदर में एक लगन है और उसी विधि से जो चलते हैं वो जरा हाथ उठाएं, उसी विधि पूर्वक चलने वाले। हाथ बहुत कम दिखाई पड़ते हैं, कम, ठीक है, अच्छी बात है। आज हम सबको उस विधि को एकदम दिल से लगाने हैं। अच्छा, अभी जिन्होंने हाथ उठाया बहुत अच्छा किया, अब उसमें सफलता का रेशियो कैसे बनता है? मैंने एक संकल्प किया कि मुझे एग्जाम में नंबर 1 लेना है। अब ये संकल्प करने के बाद उस संकल्प की 2 गति हो सकती है। एक गति है कि मैं सोते जागते एक ही कॉन्शियस में हो, कुछ भी हो जाए मुझे नंबर 1 लेना है, कुछ भी हो जाए मुझे उसमें सफल होना ही है, कुछ भी हो जाए मुझे उसके पर मर मिटना पड़े लेकिन मुझे सफलता प्राप्त करनी ही है। जिनके पास इस प्रकार के संकल्प की क्रिएशन का अभ्यास है, डू और डाई, ऐसे संकल्प का जिसके पास अभ्यास है वो हाथ उठाए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। अच्छा, खड़े हो जाना। अब ऐसे संकल्प करने वाले, जिनों को ऐसा संकल्प करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिली हो, वो हाथ उठाए। अच्छा, जिनों का ये अनुभव है कि हमने इस क्वालिटी के संकल्प किए जीवन में और हमेशा ही विजय ही पाई है, वो हाथ उठाएं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बैठिए। अब इसका सीक्रेट मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। सीक्रेट क्या है? मैंने एक संकल्प किया कि मुझे नंबर 1 लेना है, लेकिन उसी संकल्प के साथ साथ मैं सोचती हूँ मेरे क्लास में तो बहुत कॉम्पिटिटर हैं। सोचा तो है लेकिन अभी क्या होता है देखती है। बाकी सब सब्जेक्ट में तो ठीक है लेकिन ये मैथ्स और इंग्लिश तो बहुत टफ है। मार उसी में खा जाऊंगी। इस प्रकार के संकल्प करने के बाद संशयात्मक विचार आते हैं और फिर भी आपकी यात्रा उसी मार्ग पर चालू है। क्या होता है कि आपने ये जो संकल्प के बीच में शंका की, भय रखा, अनिश्चितता की मार्जिन रखी, उसमें आप थोड़े वीक हो जाते हैं अपने टारगेट्स को पहुंचने में, और जिसके कारण आपने जैसा सोचा वो रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। ये बात सही है? ये बात आप सभी स्वीकार करते हैं कि ये बात सच्ची बात है? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। जिसको बाबा के शब्दों में कहा जाए तो, लेकिन ये लेकिन आना, कोई भी संकल्प करने के बाद उसमें लेकिन आना निष्फलता का बीज डाल दिया। और दूसरा ऑप्शन ये है, मैंने संकल्प कर लिया और संकल्प करने के बाद एक ही बात, मैंने जीवन में बहुत काम किए हैं, मुझे बाबा का बहुत साथ मिला है, भक्ति में भगवान थे अभी बाबा हैं, और ये कार्य मेरे से संपन्न हुआ ही पड़ा है, दुनिया की सर्व शक्तियां मेरे साथ हैं, मेरे लिए सब कुछ संभव है, मैं जमीन आसमान एक कर दूंगी लेकिन सफलता पा करके ही रहूंगी, और वो देखते रहेंगे कि यस पास। मैं आपको, मेरे जीवन का अनमोल खजाना है साकार बाबा के बाद अव्यक्त बाप दादा से, इसलिए मैं आपको अनुभव सुनाना चाहती हूँ। भगवान ने मेरी परीक्षाएं ली हैं, जिस परीक्षा में से मैं आर पार पास हो चुकी हूँ, लेकिन एक ही दृढ़ संकल्प, उसमें रिंचक भी इधर उधर नहीं होना है। मैं ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में थी, एनसीसी में अंडर ऑफिसर थी, दिल्ली में 26 जनवरी की परेड में मेरा सिलेक्शन हुआ था और मुझे पूरी टीम की लीडर बन के जाना था, लेकिन मुझे बाबा मिल गया था और बाबा को पूछे बिना मैं कुछ नहीं करती थी। तो मैं खास अहमदाबाद से आबू आई बाबा के पास, ब्रह्मा बाबा के पास, और बाबा को मिली और बाबा से पूछा, बाबा मुझे ऐसे ऐसे दिल्ली जाना है और वहाँ एक मास रहना है, तो बाबा मेरे खाने पीने की धारणा का और मेरा रहने आदि का क्या प्रबंध दिल्ली में होगा? तो बाबा मेरे को क्या पूछा, अच्छा बच्ची तेरे को परेड करना आता है क्या? मैंने कहा जी बाबा, हम तीन बहनें बाबा को मिलने गई थी, तो ऐसा करो आज रात्रि क्लास में परेड करके दिखाओ। और लच्छू बहन, अभी तो नहीं है, हमारी ईशु दादी की बहन, आज ईशु दादी भी आपको मिलने वाले हैं, तो बाबा ने कहा लच्छू बच्ची इधर आओ, ये तीनों बच्चियों को पहरे वाले के नए नए ड्रेस निकाल के दे दो। तो हमको तो नए नए ड्रेस मिले, हमने सारा दिन अच्छी तरह से प्रैक्टिस किया, रात्रि क्लास में बाबा ने मुरली, रात्रि मुरली क्लास के बाद बुलाया, अच्छा आज देखो अहमदाबाद से बच्ची आई है, वो परेड करेगी, ड्रिल करेगी। हम लोग तो बड़े नशे में थे, ड्रिल किया हमने, बाबा को सैल्यूट किया, फिर बाबा ने बहुत महिमा की, टोली बोली खिलाई और कहा कि अगर बच्चियां रूहानी ड्रिल करना सीख जाए तो बाबा का नाम बाला कट सकती है। दस बाबा ने ऐसा कहा, टोली दे दी, गुड नाइट हो गई। हम तो रूम में गए पर सारी रात नींद आई। क्यों नींद नहीं आई? अभी बाबा ने बताया नहीं था कि हम कहाँ रहेंगे, खाने पीने का क्या होगा, तो नींद नहीं आई। सुबह हुई, मुरली क्लास पूरा हुआ। जैसे ही मुरली क्लास पूरा हुआ, मैंने बाबा का हाथ पकड़ लिया। हॉल में से बाबा कमरे में जा रहे थे और जाकर के बाबा के सामने चैम्बर में बैठ गई। फिर बाबा को कहा, बाबा छोटे 18 साल की थी, कोई बहुत बड़ी नहीं थी। तो मैंने कहा, बाबा आपने ये तो बताया नहीं कि मैं दिल्ली में जाऊंगी तो फिर कहाँ रहूंगी। तो बाबा ने बड़ा मुस्कुराया, मुस्कुरा करके फिर सामने देखते रहे। फिर कहा, बच्ची बाबा जानता चाहता है तुम्हारे जैसी बच्ची का एक मास का टाइम वेस्ट नहीं जाना चाहिए। ठीक है, बाबा ने श्रीमत दे दी। मैंने 2 से 3 सेकंड नहीं लिया, मैंने बाबा को उसी समय बोल दिया, बाबा अगर आप नहीं चाहेंगे मैं नहीं जाऊंगी। और मैंने दिल्ली जाने का छोड़ दिया। ये मेरे लिए बड़ी परीक्षा थी कि नहीं? क्योंकि ये तो लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा एक चांस होता है। पर मैंने बाबा की बात स्वीकार करके छोड़ दिया। उस त्याग का मुझे कितना बड़ा भाग्य मिला है। अभी तो हमारी बहनों को नौकरी छोड़ने में, माँ बाप को छोड़ने में, सुख सुविधाओं को छोड़ने में बड़ा दिल हृदय विदीर्ण होता है। पता नहीं क्या होगा। हमने नहीं, ठीक है बाबा ने बोल दिया, हमने जाने का छोड़ दिया। अब अभी 3 दिन में थी वहां, 2 दिन के बाद बाबा ने मेरे को बुलाया। और वेदांति बहन, जो मेरी बड़ी बहन है, अभी अफ्रीका में है, दोनों को बुलाया और कहा, इधर आओ, देखो ये कुमार का बच्ची आई है बंबई से, वो पूरे इंडिया के टूर पर जाने वाली है, तुम लोग जाओगे? मैंने कहा, जी बाबा। बोले, तुम्हारा बाप छुट्टी देगा? हमने कहा, ले लेंगे, क्योंकि बंधन में थे, वैसे ये छुट्टी नहीं मिलती थी। तो कहा, जाओ कुमार का दादी से मिलो और पूरा अपना रूट ले लो और टिकट बना के आ जाओ। तो हम दादी को मिले, दादी ने हमको रूट दे दिया, अहमदाबाद गए। पिताजी रेलवे में स्टेशन मास्टर थे, फर्स्ट क्लास की टिकट यूं ही मिल जाती थी। तो हम लोग बना के आ गए और दादी कुमार का के साथ 25 दिन तक, उस समय जितने सेंटर्स थे, आगरा, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, मद्रास, कलकत्ता, जितने भी सारे सेंटर्स पर हम टूर पर गए। और बाबा ने क्या किया, सभी सेंटर्स पर पत्र लिखवा दिया, 2 हंसों का जोड़ा आ रहा है, बच्चियों का अनुभव बहुत अच्छा है, दोनों ही बच्चियों का अनुभव का क्लास रखना। तो हम जहां गए वहां अनुभव का क्लास बाबा ने रखा। ये बात कौन से साल की है? 1967। पूरा हुआ त्याग का भाग्य, देखो कितना मिला। जो दादी ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद संस्था की प्रमुख दादी बनी, उस दादी के साथ 25 दिन घूमने का भाग्य कैसे मिला? त्याग के आधार से भाग्य मिला। अब एक दूसरा अनुभव सुनाती हूँ। बाबा अव्यक्त हो गए। हमारी दादी प्रकाशमणि जी को विचार आया कि अभी तो सेवा कितनी बाकी है, तो अभी हमें हैंड्स तैयार करना चाहिए। तो यज्ञ में फर्स्ट टाइम कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों की ट्रेनिंग रखी और पूरे भारत से केवल 35 कुमारियों को उसमें छुट्टी थी। उसमें मेरे को भी आने का मौका मिला। पांडव भवन में कुमारियों की फर्स्ट ट्रेनिंग थी। अब उस ट्रेनिंग के अंदर पहले ही दिन अव्यक्त बाप दादा ने हम लोगों को तिलक लगाया भट्टी का, और बाबा हर एक से पूछते जाते थे कौन सा नंबर लेंगी, कौन सा नंबर लेंगी। मेरा नंबर आया, मैंने कहा फर्स्ट नंबर लूंगी। बहुत सारे लोगों ने कहा फर्स्ट नंबर लूंगी। दूसरे दिन मेरी बड़ी टेस्ट हो गई। दादी प्रकाशमणि ने मेरे को बुलाया, बोला चंद्रिका इधर आओ, तुमको ट्रेनिंग में बैठना नहीं है, म्यूजियम में गुजराती गाइड की बहुत जरूर है, तुमको कल से म्यूजियम में सुबह रोज 9:30 जाना है और रात्रि को 9:30 वापस आना है, तुमको ट्रेनिंग में नहीं जाना है। हमने कहा ठीक है दादी। दादी बोली भगवान हमने तो चालू कर दिया। हमारी फ्रेंड सखी सहेलियां हमको बहुत उकसाती थी, ऐसे थोड़ी होता है, तुम बोलो ने, ना कर दो दादी को, ऐसी ट्रेनिंग फिर कब मिलेंगी तुम्हारे को। मैंने कहा बड़ों के आगे कभी ऐसा नहीं किया जाता है, पर मैंने क्या किया, आशा दीदी और शिलू बहन उनको मेरी फ्रेंड बना लिया। उनको बोला आपकी डायरिया मेरे को दे देना, रात को उनकी डायरी लेकर के जो पांडव भवन का ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ हमारी कुमारियों का सामान एक ही कमरे में रखा जाता था, जैसे मिलिट्री में रखते हैं, और उसमें 40 का बल्ब जलता था, बाकी लाइटें बंद हो जाती थी। मैं रात को 10:00 उसी कमरे में जाके पूरे दिन में जो क्लासेस हुए हैं वो रात को लिखती थी। लिखते लिखते कभी 12, 1, 2 बज जाते थे, कभी सारी रात भी हो जाती थी, पर मैं सारे क्लासेस लिख लेती थी। और फिर दिन में म्यूजियम में भोजन के बाद 1 से 4 तक ब्रेक होता था, उसमें सारा पढ़ लेती थी। 15 हो गए। बाद में हमारी नलिनी दीदी, रतन मोहिनी दादी, चंद्रमणि दादी, कुंज दादी, ये सब हमारे टीचर्स थे, उन्होंने मेरे को बुला के कहा कि चंद्रिका तुम दादी को बोलो ऐसे थोड़ी कि मेरे को ट्रेनिंग में रहना है। मैंने कहा दादी मेरे लिए भगवान है, मैं नहीं कह सकती हूँ, ठीक है मैं अपनी रीति ट्रेनिंग ले रही हूँ। उन्होंने दादी को मेरे लिए कहा और 15 के बाद मुझे ट्रेनिंग में जाने की परमिशन मिली। उसी दिन शाम को बाप दादा आने वाले थे, बाबा की पधरामणी हुई, फिर बाबा एक एक कुमारी से मिलने लगे, फिर मेरा नंबर आया। बाबा ने पूछा कितनों को आप समान बनाओगी, मैंने कहा 3-4 को। बाबा ने कहा नहीं फिक्स बोलो, मैंने कहा 3 को। अच्छा मैं दूसरे दिन से ट्रेनिंग में आई तो मुझे मॉनिटर बना दिया, तो और जिम्मेवारी बढ़ गई। अच्छा फिर 1 के बाद हमारी एग्जाम ली थी, 3 पेपर लिए गए थे बाकायदे एग्जाम। तो अर्जुन एग्जाम पूरी हुई और 1 के बाद बाप दादा की पधरामणी हुई। बाप दादा की पधरामणी हुई तो मैं अपने पांडव भवन के छोटे हॉल में एकदम पीछे से 4th लाइन में बैठी थी। अब बाबा मेरे सामने ही देख रहे थे ऐसा मुझे लगता था, लेकिन बाबा काफी समय देखते रहे। फिर बाबा ने ऐसे इशारा किया तो मेरे को सभी ने कहा जाओ बुला रहे हैं बाबा। इनका मेरे को बुला रहे हैं, बोला हाँ पर बाबा ने कहा, बाबा के सामने बैठी थी, बाबा ने मेरे को सवाल पूछा, अच्छा बच्ची बाबा को क्यों बुलाया है? अब बाबा तो अपने प्रोग्राम प्रमाण आए थे, लेकिन हमको खुशी तो थी ना, हमने कहा बाबा हमारी रिजल्ट देने लिए। तो मुझे कहा तुम अपनी रिजल्ट नहीं जानती हो? मैंने कहा वैसे जानती हूँ बाबा, पर आप जो बताएंगे वो फाइनल माना जाएगा ने। फिर बाबा ने 35 कुमारियां थी, सभी से पूछा बताओ इस ग्रुप में फर्स्ट नंबर किसका आता है, सभी बोलने लगे। और बाबा पूछने, क्यों नंबर फर्स्ट देते हो? बाबा हर एक से पूछे। लास्ट में बाबा ने कहा, बाप दादा बच्ची को नंबर वन देता है। मैं आपको ये इसलिए सुना रही हूं कि बाबा ने जब मेरे को ये कहा तो साथ में एक काम दिया है, नंबर वन का कर्तव्य है दूसरों को अपने जैसा नंबर वन बनाना। इसलिए जब मैं कुमारियों को देखती हूँ तो मेरे को अव्यक्त बाप दादा याद आ जाता है, बाबा ने दिया हुआ ये काम मेरे दिल में आ जाता है। और मेरे को दिल में ऐसा होता है कि मेरे को कहाँ कुमारियों के बीच बिठा दे, तो दिन रात मैं यही साधना करती रहूं जो मुझे बाबा ने काम दिया है। सफल होने की विधि एक ही है, दृढ़ता, सकारात्मकता और बड़ों की आज्ञा पर चलना। कभी भी बड़ों के विचार के आगे, संकल्प के आगे, आज्ञाओं के आगे अपनी बुद्धि को जरा भी नहीं बढ़ाना। अब ये जो संकल्प की विधि है, इस संकल्प की विधि के द्वारा हमें अपना चित्र बनाना है। हमारा यूथ का प्रोग्राम है ना, उसका विषय है युवा कल का शिल्पकार। आप सभी यूथ हो, आने वाली कल के शिल्पकार हो। आप जो आज सोचेंगे वो आप कल देखेंगे। और बाबा तो कहता है कल करना तो आज कर, आज करना है सो अब कर। तो दो मिनट एकदम एकाग्र चित्त होकर के आप विजुअलाइज कर लो कि मुझे इस ब्रह्मा कुमारी जीवन में क्या बनना है, मेरा रोल मुझे क्या क्रिएट करना है, और उसको संकल्प के रूप में ले लो और उसी के पीछे लग लगे की तरह लग जाओ। अथक पुरुषार्थ का परिणाम सफलता, सफलता, सफलता ही है। दो मिनट आप आंखें हल्की बंद कर दो, एकदम रिलैक्स हो जाओ और अपने जीवन के अंदर जबरदस्त परिवर्तन ले आओ। ऑर्डिनरी नहीं, जबरदस्त परिवर्तन ले आओ। अगर आप योग्य कुमारी हो तो आप भगवान की सेवा के निमित्त बन सकते। ये भाग्य पुरुषों को नहीं मिलता, माताओं को नहीं मिलता, भाइयों को भी बहुत चकासनी के बाद, स्क्रूटिनी के बाद मिलता है। इतना ऊंचा भाग्य मिला हुआ है। चले जाओ अपने अंदर में और अपने लक्ष्य को, अपने को मंदिर की देवी देखो, अपने को एक फरिश्ता देखो, अपने को एक दिव्य प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व के रूप में खुद को ही देखना है। हम अपने को देखेंगे तो हमारी अंतरात्मा की दिव्यता अपने आप प्रकट आएगी। 2 मिनट अंदर चले जाइए, बहुत गहराई में। और सोचिए, मेरी जीवन कौड़ियों के पीछे, सामान घर गृहस्थी माता जैसी बनानी है, या यज्ञ के आदि रत्नों की तरह प्रकार के बैरियर को समाप्त कर एक श्रेष्ठ ब्रह्मा कुमारी के देदीप्यमान व्यक्तित्व को धारण करने वाली बनानी है। घर परिवार में रहते भी मुझे रूहानियत की दिव्यता को धारण करना है। जो सोचोगे सब कुछ संभव है और इसीलिए ऊंचा सोचे, श्रेष्ठ सोचे।
ओम शांति। अपना दृढ़ता संकल्प, दृढ़ता से संपन्न संकल्प साथ ले जाए और अपने जीवन में उसको अच्छी तरह से इस घड़ी से सबूत देने के संकल्प से धारण करे। ओम शांति।